नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हवाई हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। देश भर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने कल एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है।
जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ सम्पन्न किया। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।